بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتاگن، زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ شروتاؤں، سدیو کی بھانتی کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں سے کر رہے ہیں۔ آج آپ سورہ دہر کی تیسری سے لے کر گیارہویں آیتوں تک کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں محمد صدیق منشاوی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا۔ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا۔ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا۔ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا۔ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا۔
صدق اللہ العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ہم نے منوشے کو مارگ دکھا دیا ہے، اب چاہے وہ کرتگ رہے یا اکرتگ، ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ نشچے ہی بھلے لوگ ایسے پیالے سے پئیں گے جس میں کافور کی بھلی مہک کا مشرن ہوگا۔ وہ ایک سروت ہوگا جس سے اللہ کے وشیش بندے پئیں گے اور جہاں چاہیں گے اسے بہا کر لے جائیں گے۔ ایشور کے یہ بندے منت پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا دنڈ ویاپک ہوگا، اور وہ کھانے کی چاہت و آوشکتا رکھنے کے باوجود اسے محتاج، اناتھ اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم تو کیول اللہ کی پرسنتا کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں، انیتھا نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ آبھار۔ ہمیں تو اپنے پالنہار کی اور سے ایک ایسے دن کا بھے ہے جو اتینت کرور اور لمبا ہوگا۔ تو ایشور نے انہیں اس دن کی کڑائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی و پرسنتا پردان کی۔
یہ تہران ہے، اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔ شروتاؤ، ہمارا یہ پرسارن آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ برابر 9510 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ پتر ویوہار کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس ہے hindi@sign.ws.irib.ir۔ دوستو، آج شکروار ہے، اردی بہشت کی 24، شوال کی 2 اور مئی کی 14 تاریخ۔ ہمارے آج کے کارکرموں کی روپریکھا نوٹ کر لیجیے۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے انتراشٹریہ سماچار آپ کی سیوا میں پیش کیے جائیں گے، پھر آپ سن سکیں گے دینک کارکرم راجنیتک چرچا۔ راجنیتک چرچا کے بعد ہم آپ کو عید فطر کا وشیش کارکرم سنوائیں گے۔ اور دوستو، ہماری آج کی سبھا کے انت میں پیش کیا جائے گا آپ کا من پسند کارکرم پتر سنسار۔ اب آپ ریڈیو تہران سے انتراشٹریہ سماچار سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ تہران نے سرکاروں اور انتراشٹری سنگٹھنوں اور سنستھاؤں کا ذہنی شاسن کے اپرادھوں سے مقابلے کا آہوان کیا ہے۔ ایرانی سینا نے کہا ہے کہ فلسطینی سنگھرش کرتاؤں کی کرودھ کی آگ اویدھ قبضہ کرنے والوں کی شیطانی اپستھتی کو راکھ کر دے گی۔ غزہ کے سواستھ منترالے نے بتایا ہے کہ زائنی شاسن کے پاشوک حملوں میں شہید ہونے والوں کی سنکھیا بڑھ کر 122 ہو گئی ہے۔ اور فلسطین کے حماس سنگٹھن نے زور دے کر کہا ہے کہ فلسطینی علاقوں میں زائونیوں کی چودراہٹ کا زمانہ ختم ہو گیا ہے۔ اب آپ حسن عباس سے وستار سے سماچار سنیے۔ تہران نے سرکاروں اور انتراشٹری سنگٹھنوں و سنستھاؤں کا زائونیوں کے اپرادھوں سے مقابلے کا آہوان کیا ہے۔ ایران کے ودیش منترالے نے نقبہ دیوس کے اپلکش میں ایک وگیپتی جاری کر کے سرکاروں اور انتراشٹری سنگٹھنوں و سنستھاؤں کا آہوان کیا ہے کہ وہ اتیگرہن کو سماپت کرانے اور زائونیوں کے اپرادھوں اور اتیکرمنوں کے جاری رہنے کے سمبندھ میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ ودیش منترالے نے اپنی وگیپتی میں کہا ہے کہ آج نقبہ دیوس ایسی استھتی میں آ پہنچا ہے جب مظلوم فلسطینیوں کو اویدھ قبضہ کرنے والے زائنی شاسن کے مانوتا ویرودھی نئے اپرادھوں کا سامنا ہے۔ ودیش منترالے نے کہا ہے کہ 73 سال پہلے 14 مئی 1948 کو انتراشٹریہ شڈینتر کے انترگت فلسطینی راشٹر کو اس کی ماتر بھومی سے ونچت کر دیا گیا اور اس کے استھان پر آتنکوادی شاسن استھاپت ہو گیا اور دوسری جگہ کے لوگوں کو لا کر وہاں بسا دیا گیا، اور زائونیوں نے اویدھ روپ سے فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے انہیں فلسطینیوں کے خلاف آتنکواد کا گڑھ بنا دیا، اور ان 7 دشکوں کے دوران امریکہ اور کچھ وشو شکتیوں نے اس اتیگرہن شاسن کا ویاپک سمرتھن کیا اور اس شاسن کے اپرادھوں کی اور سے آنکھیں موند لیں۔ میجر جنرل محمد باقری نے بل دے کر کہا ہے کہ فلسطینی سنگھرش کرتاؤں کے کرودھ کی آگ انتتہ اتیگرہنکاریوں کی شیطانی اپستھتی کو راکھ کر دے گی۔ میجر جنرل باقری نے فلسطینیوں کے ورودھ زائنی شاسن کے حملوں اور پاشوک اپرادھوں کی بھرسنا کی اور فلسطینی سمسیا کے سمادھان کے لیے ایک شکتیشالی اور اسٹریٹجک گٹھ بندھن بنائے جانے کی آوشیکتا پر بل دیا۔ انہوں نے زائنی شاسن کے اپرادھوں کی بھرسنا کی اور مانوادھیکار کی رکشا کا دم بھرنے والوں کی چپی اور امریکہ دوارا اسرائیلی اپرادھوں کے سمرتھن پر کھید پرکٹ کیا۔ इसी प्रकार उन्होंने फिलिस्तीनी समस्या के समाधान के लिए मुसलमानों, इस्लामी सरकारों, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक मजबूत और शक्तिशाली गठबंधन बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। ईरानी सेना के प्रमुख ने कहा कि फिलिस्तीनी जियालों के प्रयास और संघर्ष से यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो गई है कि स्थिति हर समय से अधिक फिलिस्तीनियों के हित में परिवर्तित हो चुकी है और हम ज़ायनी शासन और उसके क्षेत्रीय और क्षेत्र से बाहर के समर्थकों, विशेषकर सबसे बड़े शैतान और अमेरिका की आतंकी सरकार को चेतावनी देते हैं कि इस्लामी प्रतिरोध और शहीदों के मार्ग पर चलने वाले जियालों ने फिलिस्तीन और बैतुल मुकद्दस की आज़ादी और पवित्र भूमि और क्षेत्र से ज़ायनी शासन के पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि ज़ायनी शासन के पाशविक हमलों में शहीद होने वालों की संख्या बढ़कर 122 हो गई है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 5 दिनों से जारी ज़ायनी शासन के पाशविक हमलों में शहीद होने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या बढ़कर 122 हो गई है, जिनमें 31 बच्चे और 20 महिलाएं शामिल हैं। मंत्रालय का कहना है कि इसराइल के हमलों में अब तक 900 से ज्यादा लोग घायल भी हो चुके हैं। अवैध ज़ायनी शासन ने आज लगातार 5वें दिन भी गजा के आवासीय इलाकों को पाशविक ढंग से निशाना बनाया। उधर फिलिस्तीन के प्रतिरोधकर्ता बलों ने आज भी अवैध अधिकृत फिलिस्तीन के विभिन्न इलाकों पर रॉकेट और मिसाइलों की बारिश की। ज़ायनी सेना के प्रवक्ता हिदाई जिल्बरमैन ने शुक्रवार को यह बात स्वीकार की है कि गजा से 1800 रॉकेट इसराइल की ओर फायर किए गए हैं, जिनमें से 430 निशानों पर जाकर गिरे हैं। उन्होंने बताया कि अभी इसराइली सैनिक गजा में दाखिल नहीं हुए हैं, लेकिन उन्हें तैयार रहने का आदेश दिया गया है। ज़ायनी शासन ने दावा किया है कि शुक्रवार की सुबह को गजा पट्टी के विभिन्न इलाकों पर इसराइल के 160 युद्धक विमानों ने बमबारी की। इसराइली सेना का कहना है कि उसके 160 फाइटर जेट्स ने सिर्फ 40 मिनट में गजा पट्टी के विभिन्न लक्ष्यों पर लगभग 450 मिसाइल फायर किए। ज़ायनी सेना के प्रवक्ता ने इस बात का उल्लेख करते हुए कि गुरुवार और शुक्रवार की मध्य रात्रि को किए गए हमले कुछ दिनों से जारी झड़पों के दौरान गजा पर किए जाने वाले सबसे बड़े हमले थे। कहा कि हवाई हमले के अलावा टैंकों और तोपखाने से भी गजा पट्टी के लोगों पर कड़े हमले किए गए। उन्होंने कहा कि एक घंटे में तोपखाने के 500 और टैंकों के 50 गोले गजा पर फायर किए गए। प्रवक्ता ने कहा कि अभी इसराइली सेना ने गजा पट्टी पर जमीनी हमले शुरू नहीं किए हैं और फिलहाल सैनिक सीमावर्ती इलाकों में तैनात हैं। इस बीच फिलिस्तीन के जिहाद इस्लामी संगठन की सैन्य शाखा अल कुद्स ब्रिगेड के प्रवक्ता ने इसराइल को चेतावनी दी है कि वो प्रतिरोध को उस चीज के बारे में धमकी न दे जिसमें वो निश्चित रूप से जीतने वाला है। अबू हमजा ने गजा पट्टी पर जमीनी हमले की इसराइल की धमकी पर प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि जमीनी लड़ाई फिलिस्तीन के प्रतिरोध की जीत का सबसे छोटा रास्ता है और इस जंग में ज़ायनी सैनिक या तो मारे जाएंगे या कैद कर लिए जाएंगे। फिलिस्तीन के हमास संगठन ने जोर देकर कहा है कि बैतुल मुकद्दस, गजा या अन्य फिलिस्तीनी इलाकों में ज़ायोनियों की चौधराहट का जमाना खत्म हो गया है। हमास के प्रवक्ता फौजी बरहूम ने गजा व पश्चिमी तट के शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों के फिलिस्तीनियों के प्रतिरोध और साहस की सराहना की और कहा कि इससे पता चलता है कि पूरे फिलिस्तीन में लोगों के बीच भरपूर एकजुटता है और उनका भविष्य भी एक ही है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी जनता का प्रतिरोध ज़ायोनियों की आपराधिक कार्रवाइयों के खिलाफ है जो वे बैतुल मुकद्दस, गजा और मस्जिद अल अक्सा के विरुद्ध अंजाम दे रहे हैं। इस बीच हमास के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख ने भी सभी अरब व इस्लामी देशों से अपील की है कि वे गजा और मस्जिद अल अक्सा के समर्थन में जुलूस निकालें और प्रदर्शन करें। इस्माइल हनिया ने फिलिस्तीनी जनता के प्रतिरोध और अवैध अधिकृत फिलिस्तीनी इलाकों पर मिसाइलों की बारिश जारी रहने के साथ ही शुक्रवार को दुनिया भर के स्वतंत्रता प्रेमियों और अरब व इस्लामी राष्ट्रों से गजा और मस्जिद अल अक्सा के समर्थन और इसी तरह फिलिस्तीनी राष्ट्र के अधिकारों की बहाली के लिए जुलूस निकालने और प्रदर्शन करने की अपील की है। ज़ायोनी संचार माध्यमों ने फिलिस्तीनी प्रतिरोध द्वारा नए मिसाइल के अनावरण और महत्वपूर्ण रामून हवाई अड्डे के निकट तक उसके पहुंचने की सूचना दी है। इसराइली समाचार पत्र हारेस ने रिपोर्ट दी है कि फिलिस्तीनी प्रतिरोधकर्ताओं के मिसाइल को महत्वपूर्ण रामून हवाई अड्डे की ओर फायर किया गया है, जिससे इसराइली सेना हतप्रभ हो गई है। इसी बीच जिहाद इस्लामी की सैन्य शाखा कुद्स ब्रिगेड ने घोषणा की है कि उसने गजा पट्टी के पूर्व में स्थित नैर इसहाक क्षेत्र को लक्ष्य बनाया, जबकि नासिर सलाहुद्दीन ब्रिगेड ने भी कहा है कि उसने रफाह के पूर्व में स्थित अबू सालिम क्षेत्र में स्थित ज़ायनी शासन की जासूसी की इमारत पर हमला किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव और रूसी राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन की मजलूम जनता के खिलाफ ज़ायनी शासन के पाशविक अपराधों के बंद किए जाने की मांग की है। राष्ट्रसंघ के महासचिव अंटोनियो गुटेरस और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वर्चुअल मुलाकात में विभिन्न मामलों की समीक्षा के साथ फिलिस्तीनी जनता के खिलाफ इसराइल के पाशविक हमलों के बंद होने पर बल दिया। ज्ञात रहे कि ज़ायनी शासन के युद्धक विमानों और तोपखानों द्वारा गजा पट्टी पर भीषण हमलों के दौरान इसराइली सेना ने दावा किया है कि गजा पट्टी से हालिया 3 दिनों के दौरान 1800 से अधिक रॉकेट फायर किए गए हैं। ये समाचार आपकी सेवा में रेडियो तेहरान से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमरीकी विदेश मंत्री ने रिपब्लिकन सीनेटरों के उस गुट की मांग को रद्द कर दिया जिसमें उन्होंने वियना में गुट ईरान से परमाणु वार्ता बंद करने की मांग की थी और कहा था कि वियना में हम इस वार्ता को जारी रखेंगे। समाचार एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के अनुसार अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने वाशिंगटन में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमास को मिसाइलों और ड्रोन विमानों से लैस करने के बारे में कहा कि मेरे पास कोई ऐसी चीज पेश करने के लिए नहीं है जिससे यह साबित हो कि जो कुछ इस समय हो रहा है उसमें ईरान का हाथ है। अमरीकी विदेश मंत्री ने दावा किया कि हम केवल ये कह रहे हैं कि विध्वंसकारी कार्रवाइयों में ईरान का हाथ है, चाहे वो आतंकवाद हो या दूसरे देशों में अस्थिरता फैलाने वाली कार्रवाइयां। ये सब इस बात की पुष्टि है कि किसी भी स्थिति में ईरान की पहुंच परमाणु हथियार तक नहीं होनी चाहिए। यूरो न्यूज के अनुसार अमरीकी विदेश मंत्री ने इसी तर्क के आधार पर वियना वार्ता पर बल दिया और कहा कि इस आधार पर वियना में वार्ता जारी है ताकि देखते हैं कि परमाणु समझौते में वापस आ सकते हैं या नहीं। ज्ञात रहे कि हमास और अतिग्रहणकारी ज़ायनी शासन के मध्य तनाव के शिखर पर पहुंच जाने पर 40 रिपब्लिकन सीनेटरों ने अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक पत्र लिखकर उनका आह्वान किया था कि फिलिस्तीनी गुटों के साथ ईरान के संबंधों के दृष्टिगत वियना में परमाणु समझौते को जीवित करने के लिए होने वाली वार्ता को तुरंत बंद कर दिया जाए। IRGC की थल सेना ने एक बयान जारी करके बताया है कि आतंकी टीम को जिसने पिछले दिनों सिस्तान व बलूचिस्तान में 2 स्वयंसेवियों को शहीद किया था पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। इस्लामिक क्रांति संरक्षक बल की थल सेना के बयान में कहा गया है कि देश के दक्षिण पूर्वी भाग में होने वाली एक झड़प में 2 आतंकियों को मार गिराया और उनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। बयान के मुताबिक आतंकियों से झड़प में IRGC का एक सदस्य घायल हुआ है। KP शर्मा ओली ने शुक्रवार को तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ओली को गुरुवार को इस पद पर दोबारा नियुक्त किया गया था क्योंकि विपक्षी दल नई सरकार बनाने के लिए संसद में जरूरी बहुमत हासिल करने में विफल रहे थे। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 69 वर्षीय KP शर्मा ओली को गुरुवार की रात को फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। इससे 3 दिन पहले वे प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हार गए थे। KP शर्मा ओली 11 अक्टूबर सन 2015 से 3 अगस्त 2016 तक और उसके बाद 15 फरवरी 2018 से 13 मई 2021 तक नेपाल के प्रधानमंत्री रहे हैं। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से अंतर्राष्ट्रीय समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, मैं हूं रविश जैदी और आपका स्वागत है राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे फिलिस्तीन की ताजा स्थिति के बारे में।
المقاومه التي لا تزال توجه الضربات برا وبحرا وجوا
और अंत में चलेंगे भारत, जहां कोरोना महामारी के बीच मनाई गई ईद के बारे में हमारे संवाददाता आपको बताएंगे।
पूरे भारतवर्ष में आज ईद उल फितर धार्मिक आस्था और श्रद्धा के साथ मनाई गई।
तो सबसे पहले चलते हैं फिलिस्तीन और बात करते हैं ज़ायोनी शासन द्वारा लगातार आम फिलिस्तीनियों पर बरसाए जा रहे बमों की। वहीं फिलिस्तीन के प्रतिरोध आंदोलनों ने इसराइल के पाशविक हमलों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा है कि अवैध अधिकृत फिलिस्तीन के किसी भी इलाके में हमला करना उनके लिए पानी पीने की तरह है। इस संबंध में गज़ा फिलिस्तीन से IRIB के संवाददाता इब्राहिम अहमद एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी हसन अब्बास की आवाज में।
المقاومه التي لا تزال توجه الضربات برا وبحرا وجوا.
प्रतिरोध लगातार जमीन समुद्र और हवा से दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है. इस बीच प्रतिरोध बलों ने बल देकर कहा है कि हमारे लिए तेल रबी, डिमोना, बेरुसबा और अजदूद पर रॉकेटों की बारिश करने का फैसला करना बहुत आसान है. अगर ज़ायोनी शासन ने अपने पार्श्विक हमलों को बंद नहीं किया तो इन सभी अवैध इलाकों को पूरी तरह से तबाह कर देंगे और इसराइल के हमले पूरी तरह से विफल हो चुके हैं. तेल अबीब, यरूशलम, डिमोना, अस्कलान, अजदूद और बेरुसबा सहित इनके आगे वाले इलाके और पीछे वाले सभी अवैध अधिकृत इलाकों पर रॉकेटों की बारिश करना हमारे लिए पानी पीने से भी आसान काम है. अगर मस्जिद अल अक्सा की पवित्रता को नुकसान पहुंचाया गया, हमारी गरिमा को चोट पहुंचाई गई और अगर कोई आदेश आपके पार्श्विक हमलों के मुकाबले में हमारे राष्ट्र और हमारी पवित्रता की जीत के खिलाफ दिया जाता है तो फिर हमारे बीच कोई भी रेड लाइन बाकी रहने वाली नहीं है और तब इस युद्ध में किसी भी तरह का कोई भी सिद्धांत बाकी नहीं रह जाएगा.
ساعات ساخنه يمر بها الميدان.
غزہ اس سمے بہت ہی تناؤ بھرے سمے سے گزر رہا ہے. زیونی شاسن کے یدھک ویمانوں نے اب تک دسیوں بار غزہ پر حملہ کیا ہے جن میں زیادہ تر عام ناگرکوں اور ان کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا ہے. اسرائیلی یدھک ویمانوں کی بمباری میں قسام بریگیڈ کے کئی جیالوں کی شہادت ہوئی ہے. فلسطینیوں نے عید کے پہلے دن پرتیرودھ کے شہیدوں کا بھویہ سواگت کیا اور ساتھ ہی غزہ واسیوں نے پرتیرودھ کرتا بلوں کے ساتھ اپنی ایک جٹتا اور ان کے پرتی اپنی نشٹھا کا پوری طرح سے پردرشن کیا ہے. اس فلسطینی ماں کا کہنا ہے کہ طاقتور کیول ایشور ہے, ہم اس کے علاوہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے ہیں, کبھی سوائے ایشور کے نہ کسی کے سامنے سر جھکاتے ہیں نہ گھٹنے ٹیکتے ہیں.
مقام الفلسطینی
پرتیرودھ فلسطینی راشٹر اور پوتر ستھلوں کی رکشا کے لیے ہی استتو میں آیا ہے اور اسی بنیاد پر سنگھرش, جہاد اور اپنے حملوں کو اویدھ زیونی شاسن کے خلاف جاری رکھے گا. ہوائی حملوں کا جواب میزائلوں سے دیا جائے گا اور فلسطینی پرتیرودھ نے اپنی جوابی کارروائی سے اس بات کو ثابت بھی کر دیا ہے. پرتیرودھ نے اس طرف ہونے والی ہر تباہی کے جواب میں دشمن کو ویسے ہی تباہی کا تحفہ دیا ہے. آج اویدھ ادھیکرت فلسطین کے ایک بڑے علاقے کے لوگوں پر ڈر صاف جھلک رہا ہے اور وہ دم دبا کر سرکشت ٹھکانوں کی اور بھاگ رہے ہیں.
ابراہیم احمد, خبر گزاری صدا وسیمہ, غزہ, فلسطین.
اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا اور بات کرتے ہیں بھارت میں کورونا کال میں دوسری بار منائی گئی عید کی. ایک اور پورا بھارت جہاں کورونا مہاماری سے بری طرح جوجھ رہا ہے, وہیں یہ دوسرا سال ہے کہ جب اس دیش کے مسلمان اس مہاماری کے سائے میں عید کا تہوار منا رہے ہیں. وہیں بھارت پر شاسیت کشمیر میں بھی بڑے ہی ہرش و الاس کے ساتھ عید منائی گئی. اس بارے میں وستار سے جانکاری دے رہے ہیں شری نگر سے ہمارے سنواددتا سپتے محمد حسن.
پورے بھارت ورش میں آج عید الفطر دارمک استھا اور شردا کے ساتھ منائی گئی. اگرچہ کووڈ 19 کے کارن بڑے بڑے عید سماروہ نہیں ہوئے, پرنتو سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین رکھتے ہوئے دیش کے وبھن چھیتروں میں شرداروں نے عید نمازوں میں بھاگ لیا اور شانتی کے لیے دعائیں کی, جبکہ اس وبا کے خاتمے کے لیے بھی خصوصی پرارتھنا کی. الیکھنیہ ہے کہ ہیلتھ ایڈوائزری جاری ہوئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جمع نہ ہو جائیں اور اس کا خیال رکھتے ہوئے پورے دیش میں جتنے بھی عید کے سماروہ ہوئے وہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ کا بھرپور خیال رکھا گیا. دیش کے ساتھ ساتھ بھارت پرشاست کشمیر کے وبھن چھیتروں خاص کر کرگل اور لداخ میں عید آج منائی گئی اور یہاں بھی بڑی شردھا کے ساتھ لوگوں نے اس کا پالن کیا اور انہوں نے عید کو جہاں دھارمک طریقے سے منایا وہیں پر انہوں نے اس وبا کے خاتمے کے لیے خصوصی پرارتھنا بھی کی.
السلام علیکم تمام ہم وطنی اور اہل اسلام کو دل کی امید گرائیوں کے ساتھ عید الفطر کی بہت بہت مبارک ہو. ہم اہل رجوری کی جانب سے سب کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں. اللہ کرے عید ہمارے بیچ میں خوشیاں لائے اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ یہ جو کورونا وبا ہم میں پھیلی ہے جو کافی حد تک پھیل چکی ہے, اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ یہ کورونا بیماری جو ہے وہ ختم کرے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا کریں گے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے جو ظلم و ستم وہاں پر ہو رہا ہے, اور ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ جو تہوار آتے ہیں خوشی کا پیغام دیتے ہیں, ہم یہی لے کے چلیں گے کہ یہ جو عید آئی ہے ہمیں آپس میں مل جل کر رہنا ہے, وطن کی سلامتی کے لیے دعا کرنی ہے, ہمیں آپس میں مل کر رہنا ہے. ایک بار پھر آپ سب کو عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد.
الحمدللہ
ہم نے بھی مسجد پاک میں نماز پڑھی، گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی ہدایات تھے، ماسک کا پالن کیا گیا، ڈسٹینس کا پالن کیا گیا، اور تمام تر جو ایس او پی سے وہ ہم نے فالو کیے، اور جو بھی گائیڈ لائنز تھی گورنمنٹ کی طرف سے، حکام کی طرف سے، ان کو ہم نے بروئی کار لا کر نماز عید ادا کی، اور پوری دنیا کے انسانیت کے لیے ہم نے دعا کی کہ پوری دنیا اس وبائی بیماری میں پھنسی ہوئی ہے، آئے دن بہت سے بیمار نظر آ رہے ہیں اور پازیٹو کیسز سامنے آ رہے ہیں، ان کے لیے ہم نے دعائیں کی، اور جو اس وبائی بیمار سے فوت ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے دعائیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے اور ان لوگوں کو آسائش عطا کرے، اور جو مسلمان گزرے ان کو مغفرت فرمائے۔ انشاءاللہ ہم نے یہ دعا بھی کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا میں اس وبائی بیماری کو ختم کرے۔
جس کو جینا ہے، جب زندگی ہوگی تو تب سب کچھ ہے، جب زندگی نہیں رہے گی تو دکانداری کیا معنی رکھتی ہے، کھانا کیا معنی رکھتا ہے۔ اس لیے میری مجبورانہ گزارش لوگوں سے، ایسے پیس کا پورا خیال رکھ کر اپنی زندگی بسر کرے، اور آئندہ ہم نے دعا کی۔ ادھر مسجد میں کام ہی لوگ تھے، ڈسٹینس تھی، بہت سوشل ڈسٹینس تھی، وہ کم تعداد تھی، لیکن ہم نے دعا کی اور ہر جگہ دعا کی ہوگی۔ ہم اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اس بیماری سے ہمیں نجات ملے، اور جو ہماری عید قربان آ رہی 2-2.5 مہینے کے بعد، اللہ تعالیٰ ہمیں چاہے اور حکومت کو بھی نہ اس سے مشکلات ہو جائے، ہم جوگ در جوگ جس طرح نمازیں پڑھتے تھے ان میں، عیدگاہوں میں پڑھتے تھے، مسجدوں میں پڑھتے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے پورا وہ ٹائم دے، اور ہم آئندہ عید قربان مسجدوں میں پڑھیں گے اگر یہ پرانی بیماری کورونا تب تک ختم ہو جائے گی۔
اس بیچ COVID-19 کو لے کے جو استھتی پائی جا رہی ہے وہ انتہائی گمبھیر ہے، اور پرشاسن نے ایک بار پھر لوگوں سے کہا ہے کہ وہ ان آدیشوں کا پالن کریں جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ان کے لیے جاری کیے ہیں۔ جموں کشمیر میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 4,336 ویکتی پربھاوت ہوئے ہیں اس وبا سے، جبکہ 55 کے نکٹ لوگوں کی مرتیو بھی ہو گئی، جن میں 20 کا تعلق کشمیر پرانت سے ہے جبکہ 35 کا تعلق جموں پرانت سے ہے۔ اگرچہ جموں کشمیر پرشاسن کا کہنا ہے کہ جو کرفیو، جسے کووڈ کرفیو کہا جا سکتا ہے، کے کارن کیسز میں کمی آنا شروع ہو گیا ہے، پرنتو انہوں نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ خود احتیاط سے کام لیں، تبھی اس وبا پر نینترن پایا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ بات الیکھنی ہے کہ پچھلے 11 دن سے جموں کشمیر میں کرفیو جاری ہے، اور پرشاسن بھرپور پریاس کر رہے ہیں کہ وہ اس وبا کو قابو میں کر سکے۔ انہوں نے بار بار لوگوں سے کہا ہے کہ وہ ان کا سہیوگ دیں۔ اس بیچ جموں کشمیر پرشاسن نے کہا ہے کہ نئی دہلی سے یہ آدیش آئے ہیں کہ اب غریبوں میں مفت راشن بھی بانٹنا آرمبھ ہو جائے گا، اور اس حوالے سے اتری کشمیر کے پٹن میں باضابطہ طور پر اس کا آرمبھ بھی کر دیا گیا۔
آج سر ہم یہاں، میں تھی سو پٹن ایف او سی، یہاں ایشو ہو گیا سر، آج 9 مئی ہے سنڈے، ایز پر ڈائریکشن آف ہائر اتھارٹیز ہم نے ہر ایک جگہ سٹور اوپن رکھے ہیں، اور ہم لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، جس طرح ہم نے یہاں پر ایس او پیز ہم ان کو کہتے ہیں فالو کرو، پی آر جو سرپنچ یا مسجد انتظار کی میٹنگ، ان سے بھی ہم ہیلپ لیتے ہیں کہ اس بارے میں آپ بھی تھوڑا ہیلپ کیجیے۔ باقی راشن ہمیں اچھی طرح سے ہر جگہ یہاں ڈسٹریبیوشن ہو رہا ہے، 4 کلو 750 گرام ہیں فری رائس، اور اس کے ساتھ نارمل ہیں، اور اس کے ساتھ ہیں آٹا 1 پاؤ 250 گرام، اور شوگر اے وائی کارڈوں کے لیے 3 مہینے کا آ گیا سر، وہ بھی ہم ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں، سموتھلی فنکشن ہمارا ہو رہا ہے اس وقت۔
سپتی محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر۔
دوستوں، اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا دینک کارکرم یہیں سماپت ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔ دوستو، ہماری آج کی سبھا کا انتیم کارکرم ہوگا پتر سنسار، لیکن اس سے پہلے پرستوت ہے عید فطر کے شبھ اوسر پر ایک وشیش کارکرم۔
دوستو، عید فطر کا وشیش کارکرم لے کر آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہردادی اور محمد مہدی کا سلام، اور ساتھ ہی عید کی بدھائی سویکار کریں۔
عید فطر انسانی فطرت یا مانوی پرکرتی کی اور واپسی کے جشن کا نام ہے۔ मुसलमानों ने एक महीने तक अपने पालनहार से प्रेम पूर्ण संपर्क के अंतर्गत इस महीने को रोजे, दुआ, प्रार्थना, नमाज, कुरान मजीद की तलावत और ईश्वर के स्मरण में गुजारा है। उन्होंने अपने होठों को पाप युक्त बातों से दूर रखा है और दिन में खाने पीने से दूर रहकर अपने मन को ईश्वरीय प्रकाश की प्राप्ति के लिए तैयार किया है, ताकि ईद उल फित्र के दिन ईश्वरीय प्रतिफल हासिल कर सकें। पूरे एक महीने तक उपासना और बंदगी के बाद ईश्वरीय क्षमा की मिठास को अपने पूरे अस्तित्व से महसूस करना कितना सुखद होता है। ईद उल फित्र के दिन ईमान वाले लोग अंधेरे से मुक्ति पाकर उजाले की ओर उड़ान भरने वाले पक्षी की तरह बहुत अधिक खुश होते हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हे ईश्वर के बंदों, जान लो कि रोजा रखने वालों के लिए जो सबसे कम चीज है वो ये है कि रमजान के महीने के अंतिम दिन एक फरिश्ता उन्हें आवाज देता है कि हे ईश्वर के बंदों, तुम्हें मुबारक हो कि ईश्वर ने तुम्हारे सारे पिछले पाप क्षमा कर दिए हैं, तो अब देखो कि तुम इसके बाद किस तरह से कर्म करते हो।
ईद फित्र ऐसे लोगों का जश्न है जिन्होंने बंदगी का पहला चरण सफलता के साथ पूरा कर लिया है और उन्हें आशा है कि रमजान के महीने में उन्होंने जो आध्यात्मिक पूंजी इकट्ठा की है वो बंदगी के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए ईश्वर का सामिप्य प्राप्त करने में मदद करेगी। ईद उल फित्र उन बंदों की ईद है जिन्होंने रमजान के पवित्र महीने में अपने संघर्ष और सहनशीलता से अपनी आत्मा को विदित और निहित बुराइयों से पवित्र किया और फिर सत्य के प्रकाश की ओर चल पड़े हैं। ईद फित्र के दिन मानो उनका नया जन्म हुआ है। एक महीने के अभ्यास के बाद रोजेदार की आंखें अब लक्ष्यहीन होकर इधर उधर भटक नहीं रही हैं, बल्कि उसकी आंखों की ज्योति सत्य के दर्शन और उसकी पहचान का माध्यम बन गई है। उसके कान अब हर आवाज पर केंद्रित होने के बजाय केवल सत्य सुनने के लिए तैयार हैं। उसकी जबान ने निरर्थक बातें बिल्कुल बंद कर दी हैं और सत्य के अलावा उससे कुछ और नहीं निकल रहा है। वास्तव में रोजेदारों ने एक महीना उपासना में गुजारने के बाद अपनी क्षमताओं को समझा है और महान लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो गए हैं।
आकाश और धरती पर जश्न का समय है। फरिश्ते ईमान वालों के लिए ईश्वरीय पारितोषिक और इनाम लेकर आए हैं और ईमान वाले भी इस महान दिन ईद की नमाज के लिए इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने एकता व एकजुटता का अद्भुत नमूना पेश किया है। ईद की नमाज की पंक्तियों में अपनायत, समरसता और भाईचारा अपने चरम पर दिखाई देता है। ईद की नमाज एक नदी की भांति है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों को एक दूसरे से जोड़ देती है। प्रसिद्ध धर्मगुरु शेख मुफीद अपनी किताब अमाले में लिखते हैं, ईमान वाले इस बात से बहुत खुश होते हैं कि रमजान के पवित्र महीने में किए गए उनके दिन रात के प्रयासों से वे ईश्वर के कुछ और निकट हो गए हैं। रमजान का महीना खत्म होने के बाद शवाल महीने के पहले दिन यानी ईद उल फित्र के दिन गुस्ल या स्नान सुन्नत है कि जो पापों से पवित्रता की निशानी है। इस तरह इस दिन इत्र लगाना, सुंदर और साफ कपड़े पहनना, मैदान में जाना और खुले आसमान के नीचे नमाज पढ़ना भी सुन्नत है और ये सभी बातें खुशी का चिन्ह है।
ईद की नमाज मुसलमानों के सबसे भव्य धार्मिक संस्कारों में से एक है। ईद की नमाज आध्यात्मिक दृष्टि से उस स्तर पर है कि मुसलमानों के दिल को एक दूसरे के निकट कर सकती है। ईद की नमाज एक विशेष तरीके से आयोजित होती है। ईद उल फित्र की नमाज एक ओर पवित्र रमजान में ईश्वर के अनुकंपाओं का तो दूसरी ओर पापों से पाक होकर नए इंसान के रूप में दोबारा जन्म लेने का आभार व्यक्त करने के लिए है। इसी तरह ये इस बात का निवेदन करने के लिए है कि ईश्वर हमें ईमान, नैतिकता व सत्कर्म से सुशोभित उस स्वर्ग में दाखिल कर जिसमें तेरे चुने हुए बंदे रहते हैं। हमें बुरे कर्म व बुरी सोच से ग्रस्त नरक से दूर कर कि जिनसे तूने अपने प्रिय बंदों को दूर रखा है। वास्तव में ईद उल फित्र के दिन मुसलमान पूरी निष्ठा से ईश्वर की प्रसन्नता, उसका सामिप्य, ईश्वर के लिए सत्कर्म करने और उसकी उपासना का अवसर पाने की दुआ करता है और जिस चीज से पनाह चाहता है वो इच्छाओं और ईश्वर को छोड़ दूसरे की गुलामी से पनाह तताने की शुरुआत से पनाह है।
दोस्तों, इस दिन लोग एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं और बड़े अपने छोटों को ईदी देते हैं। अनेक देशों में सड़कों पर सजावट होती है और बहुत से स्थानों पर ईद की नमाज के बाद चाय, शरबत और स्थानीय मिठाइयां बंटती हैं। भारत, पाकिस्तान, मलेशिया और इंडोनेशिया सहित दूसरे मुसलमान आबादी वाले देशों में ईद का दिन ईद उल फित्र की नमाज के साथ शुरू होता है। लोग रंग बिरंगे, साफ सुथरे और नए कपड़ों में ईद की नमाज के लिए सफों या पंक्तियों में खड़े होते हैं। नमाज के बाद लोग परिवार के बड़ों के पास जाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। परिवार के बड़े अपने छोटों को ईदी देते हैं। बहुत से लोग फूल लिए उन रिश्तेदारों की कब्रों पर जाते हैं जो इस साल के पवित्र रमजान के महीने में उनके साथ नहीं थे, उनके लिए नमाज पढ़ते हैं।
इंडोनेशिया के लोग ईद फित्र की नमाज के बाद दिलों को भी जोड़ते हैं। वे लोग हलाल बेहलाल नमक एक कार्यक्रम आयोजित करके अपने बीच शांति व बंधुत्व को मजबूत बनाते हैं। इंडोनेशिया के लोग इस शुभ दिन एक दूसरे की गलतियों को क्षमा कर देते हैं और दूसरों से अपनी अप्रसन्नता को खत्म कर देते हैं। इंडोनेशिया के मुसलमान ईद की रात गली कूचों और सड़कों पर निकलकर अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं और ढोल वगैरह बजाकर ईद फित्र के आगमन की घोषणा करते हैं और एक दूसरे को ईद की बधाई देते हैं। यमन में सऊदी अरब द्वारा थोपे गए युद्ध और तबाही से पहले लोग ईद की नमाज के बाद मैदानों, पार्कों और जंगलों का रुख करते हैं। वे ईद आने से पहले ही नए कपड़े खरीद लेते थे और विभिन्न प्रकार की स्थानीय मिठाइयां बनाकर ईद फित्र का जश्न मनाते थे। सीरिया में भी लोग ईद के दिन के विशेष व्यंजन और मिठाइयां तैयार करके एक दूसरे के घरों में जाकर ईद मनाते हैं।
मलेशिया में ईद से कई दिन पहले ही शहरों में लाइटिंग की जाती है और नए कपड़ों की खरीदारी शुरू हो जाती है। ईद से पहले वाली रात को मलेशिया के लोग पारंपरिक व्यंजन व मिठाइयां तैयार करते हैं। रेदांग नामक व्यंजन उन्हीं में से एक है जो नारियल के पानी में बीफ और मुर्गी के मांस से तैयार किया जाता है। इसी तरह तोपात नामक एक व्यंजन भी तैयार किया जाता है जो खजूर की पत्ती में चावल को लपेटकर बनाया जाता है। इन व्यंजनों से मेहमानों का सत्कार किया जाता है। ट्यूनिशिया की महिलाएं भी ईद फित्र के दिन कई तरह की मिठाइयां तैयार करती हैं। इनमें बाकलवा, मकरूज, गुरैबा और समसा नामक विभिन्न प्रकार की मिठाइयां शामिल हैं। वे इन मिठाइयों को सीनियों में रखती हैं और जब किसी के घर जाती हैं तो मेजबान के लिए मिठाइयों की सीनी ले जाती हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा में भी ईद के दिन कई अलग अलग तरह की चहल पहल दिखाई देती है। कपड़े बेचने वालों की दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ती है। ईद उल फित्र का विशेष धार्मिक गीत गाया जाता है और मस्जिद के लाउडस्पीकर से अल्लाह अकबर की आवाज़ सुनाई देती है ताकि लोग ईद उल फित्र की नमाज के आयोजन के लिए मस्जिदों में इकट्ठा हो जाएं। ज्यादातर मोहल्लों की गलियों में दूध से बनने वाली रोटी और केक की सुगंध फैली होती है।
दोस्तों, ईद उल फित्र जहाँ अपने ईश्वर से इंसान के आत्मिक संबंध की सूचक है, वहीं ये ईद अन्य लोगों से उसके संपर्क को भी दर्शाती है। इस्लाम में ईश्वर का आज्ञा पालन और जनसेवा अलग नहीं है। जितनी ईश्वर की उपासना की सिफारिश की गई है उतना ही जनसेवा पर भी बल दिया गया है। पवित्र रमजान जिस तरह ईश्वर के कर्ज को उतारने का अच्छा अवसर है, उसी तरह ईश्वर के बंदों से संबंधित कर्तव्यों के पालन का भी स्वर्णिम अवसर है। चूंकि इस्लाम दो ध्रुवीय समाज को, जिसके एक सिरे पर अमीर और दूसरे सिरे पर गरीब हो, स्वीकार नहीं करता, इसलिए उसने न्याय के आधार पर संपत्ति के बंटवारे का आदेश दिया है। ये तभी संभव है जब अमीर अपनी संपत्ति में जरूरतमंद लोगों के अधिकारों को माने और सही समय पर उन्हें अदा करें।
यही वजह है कि ईद उल फित्र के दिन मुसलमान पहले अपने धन से फितरा नमक विशेष दान को अलग करता है, उसके बाद नमाज पढ़ता है। मोमिन बंदा ईश्वर के आज्ञा पालन का अवसर मिलने और उसकी नेमतों से फायदा उठाने का आभार व्यक्त करने के लिए वंचितों व जरूरतमंदों को फितरा देता है और अपने इस कर्म से ईश्वर चाहता है कि वो उसे हर तरह की मुसीबत व बीमारी से सुरक्षित रखे और दूसरे इंसान को अपनी अनन्य नियमतों से लाभान्वित होने का अवसर प्रदान करे। हालांकि फितरे के रूप में निकलने वाला धन कम होता है, लेकिन अगर इसे सुनियोजित रूप से इकट्ठा किया जाए तो बहुत बड़ी रकम बन सकती है, जिससे हर साल इस्लामी समाज की बहुत सी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। कुरान मजीद सूरह आला की 14वीं और 15वीं आयतों में नमाज ईद से पहले फितरा अदा करने को इंसान के कल्याण व मुक्ति का कारण बताता है। इन आयतों में कहा गया है कि सफल हो गया वो जिसने ज़कात व फितरा देकर अपने आप को पवित्र कर लिया और अपने पालनहार के नाम का स्मरण किया और नमाज अदा की। तो दोस्तों, एक बार फिर आप सबकी सेवा में ईद उल फित्र की बधाई पेश करते हैं और इस विशेष कार्यक्रम के साथ आपसे विदा लेते हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताज़ा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम।
पत्र संसार। दोस्तों, पत्र संसार में आपका स्वागत है। अपनी दीदी मरियम मेहर दादी और भैया अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, हमें आशा है कि आप जहां कहीं भी होंगे सकुशल होंगे और अपना मनपसंद कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार होंगे।
जी, तो आप जानते हैं कि आपके ईमेल, आपके पत्र, आपके कमेंट्स कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। दीदी इसके अलावा भी कुछ चीज़ें कार्यक्रम में शामिल करती हैं, तो देखते हैं कि ईमेल हमेशा शुरुआत करती हैं। आज कौन सा ईमेल है?
जी, फरीदा खातून लिखती हैं कि शनिवार को रात्रिकालीन सभा के अंतर्गत समाचार अनमोल बातें, राजनीतिक चर्चा, ईरान के पर्यटन स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और रविवार को अनमोल बातें, कुरान ईश्वर चमत्कार, सोमवार को समाचार, विश्व दर्पण और कार्यक्रम जल संकट सुना। इसके अलावा पवित्र कुरान की तिलावतें, आयतें और अनुवाद सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार में हमें तुरंत खबरें मालूम हो जाती हैं, राजनीतिक चर्चा में राज्य के समाचार मालूम हो जाते हैं, अनमोल बातें में ज्ञान की बातें मालूम हो जाती हैं, ईरान के पर्यटन स्थल में हमें घर बैठे पर्यटन स्थल की जानकारी भी प्राप्त होती है। अच्छी प्रस्तुति के लिए धन्यवाद।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद फरीदा खातून जी, आपने विस्तार से कार्यक्रमों के बारे में लिखा, यानी कार्यक्रमों की जो उपयोगिता है या उसकी जो विषय वस्तु है उसके बारे में आपने बताया। इससे ये जाहिर है कि आप बहुत ही ध्यानपूर्वक कार्यक्रम सुनती हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। पत्र व्यवहार और ईमेल से संपर्क हमारे साथ आप बनाए रखिए, आपके विचारों से आपके सुझावों से हमेशा मदद मिलती है।
जी, केसिंगा ओडिशा से सुरेश अग्रवाल लिखते हैं कि 16 अप्रैल को सांस्कृतिक खबर के तहत ईरान के लोरिस्तान प्रांत में पाई गई प्राचीन नक्काशीदार चट्टानों के बारे में जानकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये चट्टानें ईरान ही नहीं पूरे विश्व की अनमोल धरोहर हैं एवं इन्हें सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। मुझे इसके साथ ही अफगानिस्तान स्थित बामियान प्रांत में बुद्ध की प्राचीन कृतियों का भी एहसास हो आया, जिन्हें तालिबान ने नष्ट कर दिया था। भगवान उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे।
आपने महत्वपूर्ण विषय की ओर इशारा किया, ये वाकई धरोहर है और पूरे विश्व के लिए धरोहर है, इनकी रक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि इससे अध्ययन करने में बड़ी मदद मिलती है कि अतीत का जो समय था वो क्या था, किस तरह था। इसलिए भी कि हम अतीत के समय को बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ऐसा मानते हैं कि जैसे कोई पिछड़ा हुआ काल होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। बहुत सी सभ्यताएं ऐसी थीं जो अपने काल में बेहद प्रगति कर चुकी थीं और बहुत बड़ी हद तक वो तकनीकों को डेवलप करने में कामयाब हो चुकी थी। तो इस लिहाज से ये धरोहरें हैं सारे समाज के लिए, सारे मानव वर्ग के लिए, और जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ वो वाकई दुखद है और देखना यह है कि अब हालात किस तरफ जाते हैं, चूंकि वहाँ पर तालिबान का एक बार फिर से वर्चस्व होने जा रहा है ऐसा लगने लगा है, लेकिन देखते हैं कि तालिबान ने अपने आप को कितना बदला है।
दोस्तों, अब चलते हैं ईरानी संस्कृति से जुड़ी एक खबर के बारे में जानने की। तो आज मैं फीचर फिल्म के बारे में आपको बता रही हूँ। ईरानी फीचर फिल्म अफ्रीकन वायलेट, जिसका निर्देशन मोना जंदी हकीकी ने किया है और इसमें प्रसिद्ध नायिका फातिमे मोतमेदारियो ने अभिनय किया है। इस फिल्म को अमरीका में 45वें वार्षिक अटलांटा फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जा रहा है। अफ्रीकी वायलेट फिल्म की कहानी शोकू नाम की एक महिला से संबंधित है, जिसका किरदार फातिमे मोतमेदारिया ने निभाया है। शोकू 50 वर्ष की है और उसने दूसरी बार विवाह किया है। जब उसे पता चलता है कि उसके पहले पति को वृद्धाश्रम में रखा गया है, तो वो अपने बच्चों के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये के खिलाफ हस्तक्षेप करने का फैसला करती है। वो अपने वर्तमान पति रजा की सहमति से, हालांकि उसका पति दिल से सहमत नहीं रहता, वो फरीदुन को, यानी अपने पूर्व पति को, अपने घर ले आती है। इससे घर की दिनचर्या बाधित होती है। इस फिल्म ने लेबनान में त्रिपोली फिल्म महोत्सव के 6th संस्करण में स्पेशल जूरी पुरस्कार जीता है। अक्टूबर 2019 में इस फिल्म को दक्षिण कोरिया में बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 24वें संस्करण में भी प्रदर्शित किया गया है। 2021 में अपने 45वें वर्ष का जश्न मनाते हुए अटलांटा फिल्म फेस्टिवल के प्रमुख उत्सव में इस फिल्म ने भाग लिया है। अटलांटा फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 22 अप्रैल से 2 मई 2021 तक आयोजित किया गया है।
जी दीदी, बहुत ही रोचक खबर आपने सुनाई, धन्यवाद। तो दीदी, अब इसके बाद आप किसी न किसी श्रोता के विचार सुनाती हैं या कमेंट सुनाती हैं?
कमेंट्स की बारी है,
कमेंट्स की बारी है, तो कमेंट शुरू करते हैं।
जी, हमने यूरेनियम का 60% संवर्धन कर लिया, ईरान اس پر ابو میسم لکھتے ہیں کہ ایران ایک شتروتا پورن وارمنگ اکائی نہیں ہے، جیسے کہ جن پر نسل وادی بھید بھاؤ پورن پرتیبندھ لگاتے ہیں۔ انہوں نے ایشور دوارا سمرودھ اور ویگیانک وکاس میں مہان اپلبدھیوں کو پراپت کیا ہے۔ اگر ایران سمے پر پرمانو تتووں اور سنسادھنوں کے لیے کسی انی تکنیک میں مہارت حاصل کر لیتا ہے تو یہ کوئی آشچر کی بات نہیں ہوگی۔ تکنیکی اور ویگیانک پرگتی کو پرتیبندھت کرنے کا کسی کو بھی کوئی ادھیکار نہیں ہے۔
ایران نے پرمانو ارجا اور پرمانو تکنیک کے ساتھ ہی دوسرے سبھی ضروری کشیتروں میں الیکھنی وکاس کیا ہے۔ اس میں ہم نینو ٹیک، اگر آدھونک ٹیکنالوجی کی ہم بات کریں تو نینو ٹیکنالوجی ہے، اسٹم سیلس سے سمبندھت ٹیکنالوجی ہے، میڈیکل سائنس کا جو پورا کشیتر ہے، اس کے علاوہ رکشا کے کشیتر میں، انترکش کے کشیتر میں، ایران نے لگ بھگ سارے ہی کشیتروں میں وکاس کیا ہے۔ اس لیے کہ ایران پر جب پرتیبندھ لگے تو ایران کو یہ احساس ہوا کہ اسے الگ الگ کشیتروں کو اگر آگے لے جانا ہے تو ہر کشیتر میں کام کرنا پڑے گا، اس لیے کہ پرتیبندھوں کی وجہ سے رکاوٹیں پیدا ہو رہی تھیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایران بہت سارے کشیتروں میں آتم نربھر ہو گیا اور کچھ کشیتروں میں آتم نربھر ہونے کے بالکل قریب پہنچ گیا ہے۔
جی، امریکہ میں مانو ادھیکاروں کی اڑتی دھجیاں، ایک جیسی ہتیاؤں پر دوہرا رویہ، کس کے دباؤ میں ہے امریکی میڈیا؟ اس پر ایس بالو لکھتے ہیں، افریقی امریکیوں کا پرتیشت 100 سالوں میں نہیں بڑھا ہے اور وہ سرکار کا پلان ہے جو ہمیشہ چاہتا ہے کہ انہیں دوتیہ شرینی میں رکھیں، اور اس بیچ امریکہ کی سفید آبادی 90% سے 60% تک پہنچ گئی ہے، لیکن یہ سب سیما دکشن سے آنے والے پرواسیوں کے کارن ہوا ہے۔
اس بارے میں جو یہ کمنٹ ہے، اس میں آنکڑے دیے گئے ہیں، آنکڑوں کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک وہاں پر اشویتوں کے ساتھ اور گوروں سے الگ جو آبادی ہے اس کے ساتھ بھید بھاؤ کا جو سوال ہے، وہ اتنا ظاہر ہے اور صاف ہے کہ اس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ ہر تھوڑے دن پہ کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے۔ حال ہی میں بھی 16 سال کی ایک لڑکی کی ہتیا کی خبر آئی، اور جارج فلائڈ کے ہتیارے کو ایک لمبی سزا دی گئی، اسے دوشی مانا گیا، 3 بڑے اپرادھوں سے دوشی مانا گیا۔ یہ بھی ایسا ہی معاملہ تھا، پولیس ادھیکاری کو سزا دیے جانے کا معاملہ اپنے آپ میں ادبھت تھا، اس لیے کہ اس سے پہلے اس پرکار کی بہت ساری گھٹنائیں لگاتار ہوتی رہیں لیکن دوشی پولیس کرمیوں کو سزا نہیں دی جاتی تھی، جس کی وجہ سے یہ رجحان بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ حد سے زیادہ گزر گیا اور پوری دنیا میں اس پہ ہنگامہ ہوا اور ہوتا رہا مہینوں تک۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ویکتی کو سزا دے دی گئی ہے، لیکن اس سے جو وہاں پر ویوستھا ہے اشویتوں کے خلاف بھید بھاؤ کا جو وچار ہے وہ کم نہیں ہوا ہے، آج بھی موجود ہے۔
ڈیمونا پرمانو کیندر کے نکٹ بھیشن وسفوٹ، اسرائیل کو کیا سندیش دے رہا ہے اسرائیلی سینک الرٹ؟ اس پر رمیش شرما لکھتے ہیں، پشچمی میڈیا سوابھاوک روپ سے غریب بیچارے اسرائیل کے جھوٹ کو پہلے دکھائیں گے ہی۔ منشی کی آتما کے اندر بڑھ رہے اس برے کینسر کے بنا یہ ایک بہترین دنیا ہو سکتی ہے۔
یہ ٹپڑی بجلی عجیب و غریب ہے، ایک بار جی غریب دیش کی بات کریں، ایک بار کینسر کی بات،
غریب بیچارے انہوں نے اس طرح کہا ہے تاکہ یعنی ان کو تو پتا ہی ہے کہ اسرائیل کیسے سبھی کو اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے
دبائے ہوئے۔ جی، اسرائیل کا مدعا ہی سارا کا سارا یہ ہے کہ ایک فلسطین دھرتی ہے جہاں باہر سے سازش کے تحت لوگوں کو لا کے زبردستی بسا دیا گیا، دنیا کے بہت سارے دیشوں سے جمع کر کے لا کے ان کے وہاں بسا دیا گیا ہے، اور جو وہاں پر رہنے والے تھے، جو صدیوں سے رہتے چلے آئے تھے، ان کو کبھی ہتیاؤں کے ذریعے، دھماکوں کے ذریعے، آتنکی کاروائیوں کے ذریعے ان سے زمینیں، اور اسی طرح سے اور بھی بہت سارے طریقوں سے ان سے زمینیں خالی کروائی گئیں، تو یہ پوری کی پوری ایک سازش ہے۔ آشا کرتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ سازش ختم ہوگی۔
جی،
اور دیدی اب میرے خیال سے باری
جی
آ گئی،
اب باری آئی ہے مصاحبے کی، اور
انٹرویو آپ سنانا چاہ رہی ہیں۔
جی جی، تو چھتیس گڑھ سے یہ ہیں ہمارے بہت ہی اچھے شروتا بہری کرام ساہو۔
نمسکار، میں बहुरी ग्राम साहू ग्राम पोस्ट पंधी जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ से IRIB रेडियो तेहरान हिंदी सेवा का एक श्रोता हूँ। मैं पहले प्रसारण रेडियो पर सुना करता था, परंतु अब मोबाइल ऐप से सुनता हूँ। मोबाइल ऐप पर कार्यक्रम सुनना सहज सरल और सुविधाजनक तो है, किंतु वह आनंद वह संतुष्टि जो रेडियो से मिलती थी वह ऐप से नहीं मिलती है। जो सुख एवं आत्मीयता पोस्ट कार्ड में है वो ईमेल में नहीं है। रेडियो तेहरान की बात करूं तो समाचार, राजनीतिक चर्चा, आजकल एवं विश्व दर्पण में घटनाओं के विवेचनात्मक ठोस विस्तृत एवं निर्भीक प्रस्तुति पत्रकारिता का एक उदाहरण है। अन्य स्रोतों से भारतीय कश्मीर पर एक शब्द भी नहीं मिलता, किंतु रेडियो तेहरान से भारतीय कश्मीर पर नित्य रिपोर्टिंग का काम रेडियो तेहरान का भारतीय कश्मीर के प्रति रुचि को दर्शाता है। धर्म ईश्वर के कथनों पर रुचि लेता हूँ, इसीलिए सृष्टि धर्म एवं ईश्वर मेरे लिए अति इच्छित कार्यक्रम था। कुरान ईश्वरीय चमत्कार सुनकर शांति मिलती है, किंतु समाचार सुनकर दुखी हो जाता हूँ। जैसे कि सामान्य ज्ञान में बताया जाता है कि नेपाल ऐसा देश है जो कभी गुलाम नहीं रहा, किंतु यह भ्रम भी आज का इतिहास ने तोड़ दिया। अंत में यही कहना चाहूँगा कि रेडियो तेहरान के सभी उद्घोषक समर्पित परिश्रमी मृदु एवं मधुभाषी है। रेडियो तेहरान में शुद्ध हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग एवं शब्दों के शुद्ध उच्चारण किया जाता है, इसके लिए रेडियो तेहरान बधाई के पात्र है। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दीदी, मुझे लगता है कि अब समय हमारे पास नहीं बचा है, आप ज्यादा से ज्यादा ईमेल एड्रेस बता सकती हैं और वेबसाइट बता सकती हैं, इससे ज्यादा समय है
जी। तो हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir और हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। तो इसी के साथ ये सभा यहीं पर समाप्त होती है। मरियम मेहरदादी और अहमद अब्बास को अनुमति दीजिए। खुदा
खुदा हाफिज़।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, अभी आप अपना मनपसंद कार्यक्रम पत्र संसार सुन रहे थे। हमारा ये प्रसारण आपकी सेवा में शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9510 किलोहर्ट्ज पर पेश किया जा रहा था। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये सभा यहीं पर समाप्त होती है। हसन अब्बास और साथियों को अनुमति दीजिए। खुदा हाफिज़।